नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। पांचवें अध्याय। श्री शुक उवाच। राजन उदितमे तत्ते हरे कर्माघनाशन गजेन्द्र मोक्षण पुण्यां रैवतं तंतरं शृणु। श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, राजन हे महाराज परीक्षित, उदितम कहा गया एतत् यह सुप्रसिद्ध प्रसंग ते आपके प्रति हरे है भगवान श्री कृष्ण का कर्म कर्म अघनाशनम पाप का विनाश करने वाला गजेन्द्र मोक्षणां गजराज जी की रक्षा पुण्यां परम पवित्र रैवतां रैवत नामक तो अब अंतरां मनमंतर सुनो सुनिए। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को संबोधित करते हुए कहते हैं कि महाराज, आपके प्रति भगवान श्री कृष्ण का गजेन्द्र मोक्षण प्रसंग कहा गया, जो प्रसंग समस्त पापों का विनाश करता है और पुण्यम है, परम पावन है। अब रैवत मनवंतर की कथा सुनी। यहां घनश्याम दास जी ने कहा कि वक्ता इस प्रसंग को चुने, ऐसी बात नहीं है। हमारे पास यह सूचना गई कि महाराज समुद्र मंथन की कथा कही, हमारे लिए बहुत अच्छा था कि गजेंद्र की कथा गत वर्ष इसी स्थान पर हुई थी और उसके बाद ठीक समुद्र मंथन की कथा चालू हो रही है। यहीं से तो सुखदेव गोस्वामी स्वयं ही लिंक जोड़ रहे हैं। मुकेश भाई ने ही कहा था मुझसे, मैं पूछा क्या कथा होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि समुद्र मंथन। तो समुद्र मंथन में भगवान के तीन अवतारों की कथा सुनने को मिलती है, कच्छप भगवान, भगवान धन्वंतरी और श्री मोहिनी, तीन अवतार एक ही प्रसंग में। तो सुखदेव गोस्वामी संबोधन कर रहे हैं राजन, हे राजन, हे महाराज परीक्षित, बहुत सुंदर लगते हैं कथा में, आपका इतना प्रेम है, भगवान कृष्ण से प्रेम है, तो आप बहुत अच्छे लगते हैं। राजन का अर्थ होता है जो राज विराज है, तो संबोधन में राजन कहते हैं। एतत् हरे कर्म ते उदितम कथितम। भगवान हरि का कर्म अर्थात लीला आपसे कहा गया, कही गई लीला। विशिष्ट भाषा में श्री सुखदेव गोस्वामी ये नहीं कह रहे हैं कि मैं कहा, आपके प्रति कहा गया, पर मैंने का माया उदितम ये नहीं कह रहे हैं। आजकल का आदमी पहले अपने बारे में खूब बोलेगा, इसके बाद तब श्रोता के विषय में बोलेगा। देखिए ये शालीन भाषा है, आपके प्रति कहा गया, किसका कर्म, हरि का, जो परम मनोहर हैं और अपने भक्त गजराज जी का दुख जिन्होंने हर लिया वो है हरि। ऐसे हरि का, श्री कृष्ण का चरित्र आपके प्रति कहा गया। इस चरित्र की और रैवत मन्वंतर की भी दो विशेषता भगवान सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, अघनाशनम और पुण्यम। विशेष करके गजराज मोक्षण के प्रसंग के विषय में कहा, गजेंद्र की भगवान ने रक्षा किया यह प्रसंग अघनाशनम है। जीवन में कोई भी पाप हो गया हो, भूल चूक हो गई हो, गजेंद्र उद्धार की इस कथा को सुनने से, इसको बोलने से पाप का नाश हो जाता है। यह इसलिए नहीं कह रहे सुखदेव गोस्वामी की कथा में श्रद्धा बढ़नी चाहिए, जो इसका स्वरूप है, गजेंद्र का जो प्रसंग है उसके विषय में स्वाभाविक गुण है वह कर्म अघनाशन, और दूसरा गुण है पुण्य, पुण्य संपादक। जो भूल चूक हुई है, पाप हुआ है, अपराध हुआ है, उसका मार्जन हो जाता है और आगे पाप होगा नहीं, यह तीनों काल में होने वाले पाप का विनाश कर देता है। पूर्व काल में जो भी पाप हुए हैं उसका वर्तमान में पाप की प्रवृत्ति है वो भी, और भविष्य में सब पाप नष्ट करने वाला। और दूसरा गुण है केवल पाप ही नष्ट करने वाला नहीं है, ये पुण्य संपादक है, भगवान का प्रेम देने वाला है, यह अर्थ है, भगवान के प्रति भक्ति प्रदान करता है, यही पुण्यम है, पुण्य श्रवण कीर्तन। पाप का नाश करना एक निगेटिव पॉइंट है और पुण्यम ये पॉजिटिव पॉइंट है, देता है पवित्रता, भगवान के प्रति सहज प्रेम, आसक्ति, भक्ति देता है प्रसन्न। तो यह आपके प्रति कहा गया। अब पुण्यम रैवतम अंतरम सिंधु, गजेंद्र उद्धार की कथा चौथे मनमंत्र में हुई, तो पांचवें मनमंत्र की कथा कह रहे हैं। आठवें स्कंध में मनमंत्र की ही कथा है, और महाराज परीक्षित का प्रश्न था कि भगवान किस मनमंत्र में कौन लीला करते हैं, मैं इसको विशेष रूप से सुनना चाहता हूं। रैवतम अंतरम सिंधु, अब रैवत मनमंत्र की कथा सुनिए। रैवत मनमंत्र में भगवान ने जो किया वह भी अघनाशनम और पुण्यम है, ये दोनों तरफ देहली दीपक न्याय से दोनों का विशेषण है। रैवत मनमंत्र में भी भगवान श्री कृष्ण ही लीला किए हैं और आगे चाक्षुष मनमंत्र में भी वही लीला करेंगे, तो इसको सुनो। सिंधु शब्द क्यों लगा रहे हैं, क्या महाराज परीक्षित आजकल के लोगों जैसे सो रहे थे क्या कि वे कह रहे हैं कि सिंधु ठीक है। अब सिंधु कहते हैं गजेंद्र उद्धार की कथा में विभोर हो गए थे सुखदेव महाराज परीक्षित, अगले मनवंतर की कथा के लिए उनको उद्बोधित कर रहे हैं कि उसे भी ध्यान से सुनिए। रैवत मनवंतर पांचवा मनवंतर है। पंचमो रैवतो नाम मनुष तामस सोदर बलि विंध्यादयस्तस्य सुत अर्जुन पूर्वका। पांचवें मनवंतर में मनु हुए तामस के सहोदर भाई। आपने सुना कि चौथे मनवंतर में तामस मनु हुए, ये महाराज प्रियव्रत के पुत्र थे। तामस थे कि उत्तम थे, मैं भूल रहा हूं, उत्तम या तामस, ये प्रियव्रत महाराज के ही पुत्र हैं। मनवंतर में मनु बनते थे, तो ये जो रैवत हैं ये भी महाराज प्रियव्रत के पुत्र हैं। तो तामस सोदर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तामस के सहोदर भाई। इनके पुत्र हुए बलि, बिंध्य आदि। और जिन पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ हुए अर्जुन, ये सब उस मनवंतर में जो मनु महाराज के पुत्र हुए उनके नाम है। अर्थात बलि और अर्जुन, ये सब नाम तो प्रसिद्ध हैं दूसरे के लिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। अर्जुन पूर्व का, अर्जुन जिनमें सर्वश्रेष्ठ थे, और इसके अलावा बलि, बिंध्य आदि बहुत से पुत्र हुए। मनवंतर में मनु और मनुपुत्र, ये दो अंग हैं, छह अंग होते हैं, तो यहां पर गिना रहे हैं सब। विभुर इंद्र, जो रैवत मनवंतर में इंद्र हुए उनका नाम था विभु, विभु इंद्र। सुरगणा राजन भूत रयाद, और हे महाराज जो देवता हुए इंद्र का सहयोग करने के लिए, उसमें भूत रय ये सब प्रधान है। भूत रय, भूत अलग शब्द है, रय अलग शब्द है, भूत रय इत्यादि बहुत से देवता हुए। और सप्तर्षि, सप्तर्षि में कुछ का नाम गिना रहे हैं, हिरण्य रोमा, वेद शिरा, ऊर्ध्व बाहुआ, दयोद्विजा, ये द्वेष हुए ब्राह्मण हुए सप्तर्षि, हिरण्य रोमा, वेद शिरा, ऊर्ध्व बाहु इत्यादि। अब इस मनवंतर में भगवान का अवतार क्या हुआ इसको गिना रहे हैं, इसको कह रहे हैं, पत्नी विकुंठा शुभ्रस्य वैकुंठ सुर सप्तम ही तयो स्वकलया जग्ये वैकुंठो भगवान स्वयं। इस मनवंतर में शुभ्र की पत्नी थी विकुंठा, तो विकुंठा और शुभ्र से भगवान जन्म लिए, जिनका नाम हुआ वैकुंठ। विकुंठा के पुत्र होने से भगवान का नाम हुआ वैकुंठ। और भी इनके भाई हुए जिनको वैकुंठ कहा जाता है, वैकुंठ है सुर सप्तम ही देवताओं में श्रेष्ठ है। उनके साथ भगवान ने जन्म लिया, ये कहने का आशय है, उनके साथ भगवान ने जन्म लिया। तो विकुंठा का पुत्र होने से इनको वैकुंठ कहते हैं। इस अवतार में भगवान ने एक अद्भुत कार्य किया। वैसे तो सब समय इंद्र का सहयोग करते हैं, जो धर्म की स्थापना करते हैं, मनवंतर में मनु महाराज के राज्य को सुदृढ़ करते हैं, असुरों का वध करते हैं, सब तो सामान्य कार्य है। लेकिन इस अवतार में भगवान ने एक विशेष कार्य किया। अपनी प्रिया लक्ष्मी जी की इच्छा से भगवान इस प्राकृत जगत में अप्राकृत वैकुंठ को प्रकट किए। यह एक स्पेशल कार्य इस मनवंतर में है भगवान का। और सामान्य तो कार्य है ही धर्म की रक्षा करना इत्यादि। रमया प्रार्थमानेन दिव्या तत्प्रिय कामया तस् वैकुंठ कल्पितो जेन लोको लोक नमस्कृत। सबसे श्रेष्ठ लोक है वैकुंठ, जिसको सभी लोग प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि देवता अपने लोक में रहकर वैकुंठ को प्रणाम किया करते हैं, सभी लोग करते हैं, सबसे श्रेष्ठ लोक। तो वैकुंठ कल्पित है जेन, कल्पित का है अर्थ रचित, प्रकटित, वैकुंठ को जिन्होंने प्रकट किया। किसकी इच्छा से? अपनी प्रिया की इच्छा से। रमया प्रार्थमानेन, रमा प्रार्थना कर रही थी भगवान से बहुत काल से कि आप अपना धाम यहां भी प्रकट कीजिए प्राकृत जगत में, कि वो प्रकृति से पार है और वहां उसके बारे में कुछ विश्वास भी लोग नहीं करते हैं, लेकिन यहां इस जगत में जब आपका वैकुंठ धाम प्रकट होगा तो लोगों को विश्वास होगा कि हाँ आपका धाम है, आप वहां रहते हैं, तो कृपया प्रकट कीजिए। तो भगवान वैकुंठ ने अपना धाम प्रकट किया रमया प्रार्थना लेना, अपने पत्नी के आग्रह से, प्रार्थना से। तत्प्रिय कामया, उसका प्रिय करने के लिए भगवान इस धाम को प्रकट किए। लक्ष्मी जी चाहती हैं कि भगवान का प्रचार होना चाहिए, इसी के लिए लक्ष्मी जी ने एक संप्रदाय भी चलाया है जिसको श्री संप्रदाय कहते हैं, जिसमें भगवान श्री रमणीयाचार्य आते हैं। लक्ष्मी जी भगवान के धाम नाम रूप आदि का प्रचार चाहती थी, इसी के लिए वे भगवान से आग्रह कर रहे थे कि आप अपने धाम को प्रकट कीजिए, तो भगवान ने प्रकट किया। तस्यानुभाव कथित, भगवान वैकुंठ के वैकुंठ प्राकट्य के लीला को कहा गया है तृतीय स्कंध के 15वें अध्याय में वैकुंठ का वर्णन, उसी को कह रहे हैं। तस्यानुभाव कथित, तस्यानुभाव कथित, तस्यानुभाव कथित, भगवान के प्रभाव और वैकुंठ प्राकट्य की लीला कही गई है, गुणाश्च परमोदया और भगवान के परम श्रेष्ठ गुण भी कहे गए हैं। तो मान लीजिए अगर परीक्षित महाराज कहें कि फिर और सुनना चाहता और कहिए, कहा गया है लेकिन आप भी कहिए, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं महाराज जो भगवान के गुणों को गिनना चाहता है तो मैं ये समझता हूं कि तब पृथ्वी के धूलि कणों को गिन चुका है। भौमान रेणुन सब बीम में यो विष्णु वर्जे गुणा वर्णेत गुणा, जो अगर कोई ये सोचे कि भगवान के गुणों को गा करके मैं शेष कर दूं तो इसका मतलब है, ऐसे बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि पृथ्वी के धूलि कणों को गिन चुका है। तो क्या भगवान के गुणों को गिनने के पहले जरूरी है कि पृथ्वी के धूल को गिना जाए? लेकिन यह एक उक्ति है कि भगवान के गुणों को गिन पाना असंभव है, ये अनंत हैं गुण, बल्कि पृथ्वी के धूलि कणों को हो सकता है कि कोई वैज्ञानिक किसी तरह से मिल करके, इस दुनिया के सारे वैज्ञानिक चाहे ब्रह्मा जी शेषनाग जी सब मिल करके हो सकता है थोड़ा थोड़ा टुकड़ा बांट लें पृथ्वी का और धूल गिन दे और कह दें कि फाइनल इतना हुआ, लेकिन भगवान के गुणों को गिनकर शेष कर पाना असंभव है, अशक्य है। अनंत गुण है, अनंत विशेष गुण। तो भौमान रेणु सब बीम में यो विष्णु वर्जित गुणान वर्णित गुणान, जो विष्णु के गुणों को वर्णन करने का साहस करता है, पहले मैं तो ऐसा मानता हूं कि पृथ्वी की धूलि को गिन चुका है, पहले गिन ले तब शेष करने का सोचे। अर्थात श्री कृष्ण के विष्णु के गुण अनंत हैं, अशेष हैं, उनको पूरा पूरा गिन करके इतना ही गुण है ऐसा निश्चित नहीं किया जा सकता। अब यहां तक पांचवें मन्वंतर की कथा हुई, छठे मन्वंतर में समुद्र मंथन हुआ था और सातवें मन्वंतर में भगवान वामन देव के रूप में प्रकट हुए थे। ये क्रम से कथाएं आ रही हैं। षष्ठश्च चक्षुषो, षष्ठश्च चक्षुषः पुत्रश्चाक्षुषो नाम वै मनः पुरुषस्य द्युम्न प्रमुखाश्चाक्षुषात्मजः। छठवें मन्वंतर में चक्षु के पुत्र हुए चाक्षुष मन्वंतर मनु महाराज, चक्षु के पुत्र होने से इनको चाक्षुष कहते हैं। इस मन्वंतर में मनु महाराज के पुत्र हुए पुरुष और सुद्युम्न प्रमुख, ये तीन बड़े बड़े थे, मुख्य थे, और भी बहुत से पुत्र हुए, तो पुरुष और सुद्युम्न ये प्रमुख थे चाक्षुष के आत्मजों में। चाक्षुष मनु महाराज के बहुत पुत्र हुए जिनमें तीन मुख्य थे। इंद्रो मंत्र द्रुमस्तत्र, इस मन्वंतर में जो इंद्र हुए उनका नाम था मंत्र द्रुम, और देवता आप्य आदि हुए, देवताओं के गण विविध प्रकार के गण थे। और मुनियस्तत्र वही राजन हविष्मद वीरकादय, और हे राजन मुनियों में हविष्मद और वीरक आदि हुए। यहां पर गिनाया गया कि सात मनु कौन कौन थे। आदि पदेन सुमेधा वीरकश्चैव हविष्मान उत्तमो तथा मधु अति नामा सहिष्णु च सप्तासन इति चर्षय। जिस मन्वंतर की हम लोग कथा सुनने जा रहे हैं, जिस मन्वंतर में भगवान ने कच्छपावतार लिया, धन्वंतरी अवतार लिया और श्री मोहिनी अवतार लिया, उस मनु की कथा सुन रहे हैं। तो उसमें सप्तर्षि हुए थे ये सुमेधा वीरक दो, हविष्मान तीन, उत्तम चार और मधु पांच, अति नामा छह और सहिष्णु, ये सात सप्तर्षि हुए। तत्रापि छठवें मन्वंतर में भी देवः श्री भगवान संभूत्याम वैराज्यस्य भवत् सुत, वैराज के वैराज नाम की प्रजापति की पत्नी संभूति थी, वैराज की पत्नी संभूति के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए मन्वंतरावतार के रूप में। तो अजितो नाम भगवान, जिनका नाम था अजित, अंशे न जगतः पति, भगवान के अंश थे, जगत के पालक श्री भगवान के अंश से अजित भगवान प्रकट हुए छठे मन्वंतर में। वयोधिम जैन निर्मथ्य सुराणम साधिता सुधा ब्रह्माणो मसीधृता कुर्म रूपेण मंदर। इस अवतार में भगवान ने क्या लीला किया विशेष रूप से, वयोधिम जैन निर्मथ्य जैन भगवता अजितेन, वयोधिम निर्मथ्य भगवान ने इस अवतार में समुद्र का मंथन किया। पयोधि का अर्थ होता है समुद्र, समुद्र का मंथन किया, क्षीर समुद्र का मंथन किया। और सुराणाम साधिता सुधा, और देवताओं को साधित किया, अमृत दिया, अमृत पिलाया सुधा। साधिता इस शब्द से सिद्ध हो रहा है कि अमृत पिलाने में भगवान को बहुत कुछ काम करना पड़ा। साधित का तो बड़ा उपाय करके अपने भक्तों को दिया, नहीं तो मिलने वाला नहीं था। कैसे मथे, अच्छा इस श्लोक से सिद्ध होता है कि समुद्र मंथन वास्तव में केवल केवल भगवान ने किया था। ये ना एक वचन है, वयोधिम जैन निर्मथ्य सुराणाम साधिता सुधा, भगवान ने समुद्र का मंथन करके उसे अमृत निकाला और अमृत को देवताओं को साधित किया। इसका अर्थ है कि दैत्यों से बहुत झगड़ा हुआ, अथवा झगड़ा से पहले मोहिनी अवतार धारण करके उनको मोहित करके दैत्यों को, और भगवान ने अपने भक्त देवताओं को अमृत पिलाया। इस तरह से साधा, साधित शब्द का अर्थ। और भी अर्थ है कि और साधित का एक और अर्थ भी है कि भगवान ने ही उत्पन्न किया। ब्रह्म मानो अम्भसी धृतः कूर्म रूपेण मंदर, कच्छप कूर्म रूप धारण करके समुद्र में भी प्रवेश किए और उनके पीठ पर मंदराचल बड़े जोर से खींचा जा रहा था, भ्रम मारा भ्रमण कर रहा था, देवता और दैत्य मिलकर के खींच रहे थे, स्वयं भगवान भी लगे थे। वैसा घूमता हुआ मंदराचल भगवान के पीठ पर घूम रहा था। ऐसा बाद में वर्णन है, इतना बड़ा पर्वत 10,000 योजन ऊंचा भगवान के पीठ पर रगड़ा जा रहा था, खड़र खड़र घूम रहा था और भगवान को सुख की निद्रा आ गई। सो गए, लगता था उनको कोई सहला रहा है, इतना भारी पर्वत घूम रहा था। इसीलिए सुखदेव को स्वामी याद कर रहे हैं, ब्रह्म मारह जो घूम रहा था, ऐसा नहीं कि चुपे रख दिया गया, रखने पर भी तो कोई कहां से सह सकता है। साधारण पत्थर रख दिया गया तो उसी दिन लीला खत्म हो जाएगी और उस पर भी रगड़ दिया जाए तो क्या दशा है। लेकिन ऐसा विशाल पर्वत सोने का भगवान के ऊपर घूम रहा, उन्होंने धृत भ्रम मानो और भी अम्भसी जल के भीतर धारण किया, जल में धारण किया, कूर्म रूपेण मंदर, कूर्म रूप से धारण किया मंदराचल। एक श्लोक में समुद्र मंथन की लीला शेष कर रहे हैं। एक प्रकार से श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को प्रश्नावसर प्रदान कर रहे हैं, प्रश्न पूछने का एक अवसर दे रहे हैं। किसी को दिखाइए, पहले बताइए कि बहुत प्रसाद बना है, प्रसाद बना है, और थोड़ा सा दे चिखने के लिए, तो आदमी कहेगा ना थोड़ा आओ और पवाइए पवाइए, जब बनाए हैं तो तो पयोधिम जैन निर्मथ्य सुराणम साधुता सुधा भ्रम माणो अम्भसी धृता कूर्म रूपेण मंदर, एक श्लोक में पूरा कर रहे हैं। तो महाराज परीक्षित को अवसर मिला प्रश्न पूछने का, पूछ रहे हैं। हम लोगों को सदा महाराज परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी के समाज में रहना चाहिए, भागवत को ठीक से समझने के लिए और वास्तव में इसका आस्वादन करने के लिए। किस स्थिति में सुखदेव गोस्वामी है, की चेतना क्या है, महाराज परीक्षित कितने आनंद में है, और दोनों मिलकर के भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, गुणानुवाद कर रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी की बात सुनकर महाराज पूछते हैं, राजोवाच यथा भगवता ब्रह्मन् मथितः क्षीर सागरः जदर्थं वा जतश्चाद्रिं दधारांगोचरात्मना। हे ब्राह्मण, हे सर्वज्ञ, ब्रह्म का अर्थ वेद भी होता है और ब्रह्म का अर्थ भगवान होता है। जो भगवान का परम भक्त है और साथ ही भगवान के शास्त्रों को, वेद को जो ठीक से जानता है, वो है ब्राह्मण संबोधन में। तो सर्वज्ञ इसका अर्थ, हे सब कुछ जानने वाले सुखदेव गोस्वामी, जथा भगवता ब्रह्मन् मथितः क्षीर सागर, भगवता जथा क्षीर सागर मथितः, भगवान के द्वारा क्षीर समुद्र जिस प्रकार मथा गया, और जदर्थम वा, और किन लोगों के लिए ये मथा गया, किसके लिए भगवान ने मथा, जेसम प्रयोजनाया इति अर्थ, जदर्थ जद कहे पर अर्थ जेसम प्रयोजनाया, जिनके प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए, जिनके लिए भगवान ने मथा। वास्तव में भगवान ने अपने भक्तों के लिए, देवताओं के लिए मथा। और जतश्च और किस हेतु से, किस कारण से जलचर बने, कच्छप बने और मंदराचल को धारण किए, जथा जदर्थम जत, जथा क्षीर सागर मथित, कैसे मथा गया और कैसे कैसे चालू किया गया, ये सब बात बताइए, और किसके लिए मथा गया, ये समुद्र मंथन का प्रस्ताव ही कैसे आया, न देवताओं ने उनसे कहा कुछ करने के लिए मथने के लिए, न किसी ने, स्वयं भगवान देवताओं से कहते हैं कि आप लोग मथिए, मैं रहूंगा, आप लोग सफल होंगे। समुद्र मंथन का प्लान भगवान ने स्वयं ही किया। ये प्रसंग आएगा क्रम से, किस प्रकार भगवान ने क्षीर समुद्र मथा। साधारण मटका में दही नहीं मथना था, पूरा विशाल समुद्र को मथना था। तो मंथन दंड कितना बड़ा चाहिए, 10,000 योजन ऊंचा सोने का पहाड़ लाया गया उसको मथने को। लाने में ही देवता दह तो कितने मर गए थे। प्रसंग आया, मथेंगे क्या। वास्तव में मथा भगवान ने, इसीलिए महाराज परीक्षित भी कह रहे हैं कि जथा भगवता ब्रह्मन मथित क्षीर सागर जदर्थम, और जिनके लिए मथा उनको बताइए, और जतश्च दधावद्रिं अम्बुचरात्मना, जिस कारण से भगवान अम्बुचर बने, जलचर बने, अम्बु माने जल, चर माने चलचर, चरण करने वाला, आत्मा मतलब शरीर, अम्बुचरात्मना जलचर श्री विग्रह से भगवान ने धारण किया पंद्राचल को, तो किस लिए जलचर बने, किस लिए कच्छप बने, कृपया हमें सुनाइए। यह प्रश्न करके फिर प्रश्न कर रहे हैं। जथा मृतम सुरई प्राप्तम, और देवताओं को किस प्रकार अमृत मिला, इसमें सारा चरित्र मोहिनी का पूछ रहे हैं भगवान महाराज परीक्षित। जथा मृतम सुरई प्राप्तम, सुरई जथा अमृतम प्राप्तम तद्ब्रूहयति, इसे इसको बताइए, अमृत कैसे उत्पन्न हुआ, कच्छप अवतार लिए, ये सब लीला तो कही। अब जथा अमृतम सुरई प्राप्तम, देवताओं के द्वारा अमृत किस तरह से मिला, दैत्य भी मथे पे तो मथे तो कैसे लेने दिए उनको अमृत। अवश्य भगवान का कोई ट्रिक रहा होगा, इनकी कोई विशेष लीला रही होगी, इसलिए मैं इसे सुनना चाहता हूं। जथा अमृतम सुरई प्राप्तम किम चन्य दभवत तप, और उस मंथन से और भी चीजें उत्पन्न हुई कि केवल अमृत ही उत्पन्न हुआ, और क्या क्या उत्पन्न हुआ समुद्र मंथन से, वस्तुएं क्या क्या उत्पन्न हुई, और भी कुछ हुआ क्या, इसमें देवासुर संग्राम आदि हुआ उसके विषय में भी सुनना चाहते हैं। अमृत मिलने के बाद देवताओं को दैत्यों ने उनके विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया, तो वो सब भी छिपा हुआ है इस प्रश्न में। समुद्र मंथन से और क्या क्या उत्पन्न हुआ, और किसको मिला, कैसे भगवान ने दिया सबको, और क्या हुआ, युद्ध हुआ, और जैसे देवताओं को अमृत मिला, एतद् भगवतः कर्म बदस्व परम अद्भुतम्, यह सब भगवान का कर्म है, इसको यह अद्भुत है, तद् बदस्व, आप बोलिए सुनाइए। भगवतः कर्म, लीला कह देने के बाद कभी कभी आदमी भगवान की महिमा को नहीं जान पाता, इसलिए कर्म शब्द का प्रयोग यह है, भगवतः कर्म, ये भगवान का कर्म है। कोई विचार करे इस तरह से पहाड़ को धारण करना, जल के भीतर लाना, दैत्यों को मोहित करना, तो भगवान की इस लीला को, यह कर्म शब्द से है कि भगवान के इस महान पराक्रममयी लीला को मैं सुनना चाहता हूं। अद्भुत पराक्रम है, अद्भुत बुद्धि है भगवान के पास। तो किस तरह से भगवान ने सब लीला किया, तो मैं इसको सुनना चाहता हूं। तब बदस्व, भगवान के इस कर्म को परम अद्भुतम कह रहे हैं, अद्भुत है, अद्भुत, अलौकिक, असाधारण सामर्थ्य से युक्त ये सब लीलाएं। आगे आप सुनेंगे कि मंदराचल को ना रहे थे देवता और दैत्य मिल करके, साबस साबस जोर लगाते हुए नया नया परिवार में मेल हुआ था, दोनों गोतिया में परिवार में, दैत्यों में दानवों में, तो उत्साह बहुत बढ़ा हुआ था, साह बढ़ा हुआ था, तो उखाड़ लिए मंदराचल को, जितना ऊंचा था उतना ही भूमि में धसा हुआ था, पर वैसे पर्वत को उजसा उत्पाट्य जोर लगा करके सब बलि महाराज इंद्र आदि सब उखाड़ लिए, उखाड़ करके चले। चलने में तो बहुत दूर से लाना था, समुद्र के तट पर लाना था मंदराचल को, बहुत भारी था सोने का पहाड़, चलने में सबकी बाहें दुखने लगी, लेकिन हमारी बेइज्जती न हो इसके लिए कोई नहीं कहता था कि हम थक गए हैं, तो चले चले सब, हाँ हाँ चलिए चलिए चलिए, और थक तो सब गए थे, जाते जाते अब देह में दम नहीं रहा, हाथ दुख गया और पहाड़ छूट गया उनके हाथ, तो उसके नीचे ही कितने दैत्यों को देवताओं को चूरणया मास भारण महता कनकाचल, वो सोने का महान भारी पर्वत चूर्ण बना दिए कितने लोगों, जो नीचे पड़े वो सब मर गए, चूर्णया मास सुखदेव गोस्वामी को एकदम धूल में मिला दिया, चूर्ण कर दिया, हड्डी सड्डी सब मस्तक जहां टूट टाट कर कचूमर निकल गया देवताओं का, क्या कोई मत सकता है। कुछ देवता जो बगल में बच गए वे लगे रोने, हे नाथ हम तो आपके कहने से सब काम कर रहे हैं, रोने लगे तो भगवान तुरंत प्रकट हो गए, तुरंत प्रकट हो गए, गरुण जी पर चढ़े चढ़े, कोई बात नहीं, भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से देवताओं को और दैत्यों को देखा समान भाव से, और अपनी दृष्टि से अमृत वर्षित दृष्टि से जीवित कर दिया, और पर्वत को हटा करके वो जो पिछलाए थे सबको देखा, और शरीर में कोई कटा छटा पीसा हुआ अंग नहीं रह गया, सब स्वस्थ बिल्कुल हो गए देश, बल्कि और ज्यादा उत्साह हुआ, भगवान की कृपा दृष्टि से जिलाए गए थे। भगवान ने फिर पर्वत को एक हाथ से लिया और उसको गरुण जी पर रख दिया, और देवताओं को दैत्यों को कहा कि अब सब तुम लोग चढ़ करके चलो, सभी चढ़े भगवान के साथ, और गरुण जी उड़ करके इस पर्वत को लेकर के देवताओं को और असुरों को सबको उतार दिए क्षीर समुद्र के तट। ये कथा है इसमें, ये है परम अद्भुत चरित्र, एक से एक अद्भुत चरित्र है, और जब वो लोग उतारे मथने के लिए तब तक तो पर्वत ही डूब गया समुद्र में, पता ही नहीं चला, केवल हाथ से बासुकी को पकड़े पकड़े ऐसे वो डोरी रह गई या पर्वत चला गया, अब फिर रोने लगे, तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, ये गणपति जी का काम है, उनकी पूजा नहीं की गई तो उन्होंने डुबा दिया, तो वो समुद्र में प्रवेश किए कच्छप बनकर के, तो उसको निकाला, और इसके बाद फिर मथने लगे तो 20 निकल गया, प्रथम आइटम वही था 20, फिर मथना छोड़ करके अब जान बचाने के लिए भागे, तो अजित भगवान भी मत रहे थे, उन्होंने कहा कि भागो भागो शिव जी की शरण में, शिव जी की शरण में, वास्तव में भगवान अपने भक्त शिव जी को जस देना चाहते थे, तो ये भाग रहे हैं तो वो लोग भी भागे, लोग भागते भागते कैलाश चले, ये भी अद्भुत कर्म है भगवान का, जो सबकी रक्षा दृष्टि मात्र से संकल्प मात्र से कर सकते हैं वे सबके साथ भाग रहे हैं शिव जी की शरण में अपने भक्त को जस देने के, और उसके बाद शिव जी गरल पी गए, विष पी गए, तो फिर सब जुटे साइट पर, अब भय खत्म हो गया, उसके बाद अनेक आइटम निकलने लगे, अंत में सुधा निकला, अमृत निकला, तो उसको भी दैत्य लेकर के भाग चले, तो भगवान ने कहा चिंता मत करो मैं उपाय करता हूं, अब ऐसे काम नहीं होगा, बिना स्त्री के ट्रिक से कोई काम नहीं होता है ऐसे, तो भगवान ने अब इस मोहिनी रूप धारण किया, और बिना लड़ाई झगड़ा के दैत्यों के हाथ से ले लिया, वो लोग जबरदस्ती दे दिए कि नहीं तुम बांटो तुम बांटो। वो कह रहे थे कि मैं कभी सर्विस नहीं की हूं, मैं विवाहिता नहीं हूं, मैंने कभी सेवा नहीं किया। नहीं 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 तुम ठीक बांटोगे। वो लोग दे दिए अपने आप, हाथ में अमृत का कलश लेकर के भगवान कहते हैं अजी हमसे अगर कोई भूल चूक हो जाए, किसी को ज्यादा मिले कम मिले किसी को न मिले तो हमको क्षमा करेंगे तब, नहीं तो लीजिए आप अपना। तो नहीं 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 तुम ठीक बांटोगी। किसी ने कह दिया कि देखो तुम किसी को कम दोगी या ज्यादा दोगी या नहीं दोगी, स्वयं पी जाओ, हमें इसकी चिंता नहीं, अमृत की कोई चिंता नहीं, हम तो तुम्हारा रूपामृत पी करके आघा गए, बस हमारे लिए तो यही सबसे बड़ी बात। भगवान ने ऐसा मोह में डाला वे लोग अमृत पीना भूल गए, उसी को देख रहे थे पी रहे थे, सोच रहे थे कि हमारी पत्नी बन जाएगी तो मैं धन्य हो जाऊंगा, सब यही सोच रहे थे। वो कहे को मोहिनी किसी की पत्नी बनने जाए, सबको पता बता देगी। फिर उसने कहा कि तो अच्छा ऐसे बताइए इसमें कितने लोग मथे हैं, कौन कौन हैं, ईमानदारी से बांटना होगा ना। तो किसी ने कहा उसका फेवर लेने के लिए, सुनो कोई लोग बोल रहे थे नहीं नहीं हमारे भाई देवता लोग भी मथे हैं, वो भी हमारे भाई हैं, कश्यप जी के दयाद हैं सब हम लोग, वो लोग माता अदिति से हैं, हम लोग दिति से हैं, उनका भी हिस्सा है, उनको भी मिलना चाहिए। तो ठीक है तो उनको बैठाना चाहिए ना, उनको भी बैठा गया, लेकिन थोड़ा मोहिनी ने ट्रिक किया, उनको थोड़ा दूर दूर बैठाया था। और जब अमृत का कलश हाथ में लेकर के चली बांटने के लिए, तो दैत्यों को मोहित कर रही थी अपने नेत्र के इशारे कटाक्ष से, अपने साड़ी के आंचल से, इनके लाइन में घूम रही थी बार बार, तो उसका आंचल लग रहा था किसी पर, हवा लग रही थी, तो अपने को धन्य मान रहे थे, धन्य हैं हम, और नुपुर की आवाज सुनने लगते थे, मुस्कुरा करके देखती थी। बाद में उसने कहा कि ये जो देवता बैठे हैं भूखे खखवाए हैं, इनको मैं जरा अमृत का पंचोछर ऊपर का दे करके और आप लोगों को मांग पिला दूंगी। कहा नहीं, लेकिन उसने यह संकेत किया कि जरा उनको पिला करके हटा रही हूं। हाँ ठीक है जाओ पहले हटाओ उनको, उनको पिलाओ पिलाओ। और चली गई अपने भक्तों के पास। नहीं कहीं भी चतुरता चलती है, भगवान पर किसी की बुद्धि नहीं चल सकती। ये बहुत चतुर बने थे, जब साथ में देवता मंथन किए थे उतना ही परिश्रम, तो क्यों लेकर के भागे थे, अमृत लेकर के लोग भागे थे। अंततः भगवान के हाथ में आ गया, देवताओं को भर भर गिलास दिया मोहिनी, तो अक्षय पात्र थे, खूब पिलाया। और कितने असुर थे जो बीच में उकस रहे थे, हमें नहीं लगता है कि आएगा हमारे पास अमृत, इतना ज्यादा दे रही है, लौटेगा नहीं, आएगा नहीं, बचेगा नहीं, इसको थोड़ा टोकना चाहिए टोकना चाहिए। हम कहते थे हम कुछ कहें तो दूसरे कहते थे, जो विद्वान लोग गए थे चुप, पहले ही बेचारे ने क्या शर्त कराया है, तुम अपनी हीनता कराओगे, हम लोग इतने महान व्यक्ति हैं, जब शर्त हो गई है तो हो गई, चाहे मिले या ना मिले। तो उसका विश्वास जीतने के लिए कोई टोका नहीं, वो लोग नीति बताते थे, देखो कभी भूल कर भी स्त्री से विवाद नहीं करना चाहिए, झगड़ा स्त्री से नहीं करना चाहिए, जीवन की सारी कमाई जा रही है, झगड़ा तो देवताओं से करना है, विष्णु से करना है, बाकी स्त्री से नहीं, तो कुछ भी करे, देखिए दैत्यों की बुद्धि, नहीं इसे विवाद नहीं करना है, पहले ही इसने शर्त किया है। और दूसरी बात यह थी कि उनको विश्वास था कि देगी देगी, धैर्य रख, और सबके देखते देखते अमृत का कलश शेष हुआ और वहीं पर मोहिनी अंतर्हित हुई, पता ही नहीं चला कहां चल गए। तो भगवान अंतर्हित हो गए। अब ये लोग भूखे बैठे थे, इतने महीने का मेहनत किया हुआ समुद्र मंथन में, देवता लोग डकार रहे थे भर भर पेट पीकर। तो ये लोग कहे कि अमृत पीने से क्या हुआ, अभी तुमको बताते हैं। अपना सेना सजाने लगे, हाथी घोड़ा आदि सब, और देवताओं के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ये भी बेवकूफी थी। जो लोग भगवान का फेवर प्राप्त किए हैं, अमृत पिए हैं, उनके साथ अब संधि करनी चाहिए ना। उल्टे युद्ध किए और बुरी तरह से मारे गए। बलि महाराज भी जान से मार दिए गए इस जरासुर संग्राम। ये भगवान के अद्भुत कर्म है। मैं संक्षेप में उसकी रूपरेखा बता रहा हूं, जिसके विषय में श्री परीक्षित महाराज अद्भुत कह रहे हैं। अद्भुत कर्म को कहिए, कहिए, हम उसे सुनना चाहते हैं। अपनी श्रवण उत्सुकता को व्यक्त कर रहे हैं। एक अद्भुत बात महाराज परीक्षित कहते हैं अंतिम अपने श्लोक में, त्वया संकथ्यमानेन महिमना सत्वतां पतेः नाति तृप्यति मे चित्तं सुचिरं तापतापितं। जब आप सत्वोत्पत्ति भक्तों के पालक भगवान श्री हरि की कृष्ण की महिमा कह रहे हैं, गुणों का वर्णन कर रहे हैं, जैसे गजेंद्र उपाख्यान में आपने किया, इसको सुन करके मेरा चित्त तृप्त नहीं हो रहा है। तृप्त का अर्थ है कि आकांक्षा रहित नहीं हो रहा है। सुनने की आकांक्षा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसका कारण है कि सुचिरम ताप तापित, बहुत काल तक, बहुत वर्षों तक, युग युग में, जन्म जन्म में मेरा चित्त तप्त रहा है, दुखी रहा है। सुचिरम ताप तापित, ताप से, आध्यात्मिक आदि त्रितापों से, दुख से मेरा हृदय जलता रहा है। अब जीवन में अवसर मिला है कि आपके मुख से मैं अमृत पी रहा हूं, अमृत पी रहा हूं। आप इतना पिला रहे फिर भी मेरा चित्त पूरा पूरा शांत नहीं हुआ, तो सुनने की लालसा बढ़ती ही जा रही है। सुचिरम ताप तापित, जैसा नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है श्री रूप मंजरी पद में, दुआ अदर्शन अही गरले जारल देही, आपके अदर्शन के विष से मेरा शरीर जल चुका है। वास्तव में जीव भगवान कृष्ण से अनादि काल से बहिर्मुख, जिसके साथ सुख मिलेगा, जो सुख का साक्षात मूर्तिमान स्वरूप है, वैसे श्री कृष्ण को, प्रियतम को छोड़ करके हम लोग सुखी होने का बहुत प्रयास कर रहे हैं संसार में। इससे हम सुखी हो जाएंगे, इससे सुखी हो जाएंगे, यह सुनने से, यह कहने से, यह। लेकिन सुचिरम चित ताप तापित, चित जलता ही जाता है, जलता ही रहता है। सुख किसमें है, कैसे चित सुखी होगा? भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनने से। महाराज परीक्षित जब ऋषि का साप सुनकर गंगा जी के तट पर बैठे, तो केवल अभी कितना दिन बीता होगा, 3 दिन होता होगा, 3 साढ़े 3 दिन। इसके अलावा वो कह रहे कि हमारा जो समय बीता है, तो हमारा चित्त ताप तापितम, अनेक तापों से तप्त रहा है, तप्त रहा है। त्वया संकथ्य माने न महिमना सत्वताम पते है ना तो तृप्यति मे चित्तम सुचिरम ताप तापितम। आप अमृत दे रहे हैं, मुझे शांति दे रहे हैं, लेकिन और दीजिए, और दीजिए, मेरा तप चित्त अभी शांत नहीं हो रहा है। अथा सुनने की लालसा मेरी बहुत बढ़ती बढ़ रही है, और सुनाइए, और सुनिए। आप अमृत पिला रहे हैं लेकिन मेरी आकांक्षा जा नहीं रही है। इस तरह से कथा सुनी जाती है, सुनने की लालसा हो, बढ़ती जाए। नाक तृप्यति में चित्तम सुचिरम ताप तापितम, नैव तृप्यति अत्यंतस्तल लुब्धाय विस्तरतो ब्रूहि इति भाव। मैं उस कथा का लुब्ध हूं, मुझे बहुत बेचैनी है सुनने की, आप उसको विस्तार से सुनाइए। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने इस विशाल प्रसंग को एक श्लोक में पूरा किया। उसी पर महाराज परीक्षित फिर इसको विस्तार से सुनाने के लिए आग्रह कर रहे हैं। तब श्री सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में सोनकादि ऋषियों को संबोधित कर रहे हैं। जब सुखदेव जी कथा कह रहे थे, महाराज परीक्षित सुन रहे थे, तो महाराज परीक्षित के साथ ही सूत गोस्वामी बैठे थे निकट में। तो वो सब देखे हैं कि क्या महाराज ने प्रश्न किया और श्रील सुखदेव गोस्वामी ने किस प्रकार उत्तर दिया। तो वही कह रहे हैं श्री सुत उवाच। संपृष्टो भगवानेवं द्वैपायन सुतो द्विजः अभिनन्द्य हरेर्वीर्यम् अभ्यचष्टुम् प्रचक्रमे। जब इस प्रकार भगवान वेदव्यास देवपुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी जब पूछे गए महाराज परीक्षित के द्वारा अभिनन्द्य, उनके प्रश्न का अभिनंदन करके और भगवान के वीर्य को, वीरता को, उनके पराक्रम को कहना प्रारंभ किया। शुद्ध गोस्वामी बीच में लिंग जोड़ते हैं। इस प्रकार महाराज परीक्षित ने पूछा तो श्रील सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन प्रारंभ किया। श्री सुक उवाच। जदा युद्धैरसुरैर् देवा बाध्यमाना सीतायुधै गतासौ निपतिता नोत्तिष्ठेरं स्मभूयशः। अब सुखदेव गोस्वामी बिल्कुल शुरू से कथा कह रहे हैं। ये प्रश्न था किसके लिए मत है, इसी प्रश्न का उत्तर पहले दिया जा रहा है। तो जब असुरों के द्वारा देवता तीक्ष्ण आयुधों से मारे गए, बुरी तरह से उनकी पराजय हुई, गता सब निपतिता, उनका उत्साह चला गया, कितने के प्राण चले गए, युद्ध भूमि में गिरे देवता लोग तो फिर उठे नहीं, न तिष्ठे रंश में भू ऐसा फिर उठे नहीं, बहुत से देवता घायल हुए, क्या क्या हुए, क्यों नहीं उठे, क्या कारण था, देवता परास्त हुए थे। ये समुद्र मंथन से बहुत पहले की घटना सुना रहे हैं। एक बार दुर्वासा मुनि वैकुंठ से आ रहे थे, वैकुंठ से, यही जो कहा गया ना वैकुंठ, भगवान वैकुंठ प्रकट किए यहां से, तो उन्हें भगवान की प्रसादी माला मिली थी, माला लगाकर आ रहे। तो स्वर्ग में आए, तो स्वर्ग में आने पर देवराज इंद्र से भेंट करते हुए आना चाहते, तो देवराज इंद्र हाथी पर चढ़े थे और उन्होंने माला दिया देवराज इंद्र को कि भगवान के प्रसादी माला है, ध्यान कीजिए। तो इंद्र त्रिभुवन के ऐश्वर्य में थे, मद में थे, धन के मद में, क्या ये माला हो सकता है उनको देखने में अच्छा ना लगा हो, जो भी हो, धन के घमंड में थे, भगवान की डायरेक्ट माला को जो दुर्वासा जी दिए थे प्रसाद, उसको धारण नहीं किए, और दुर्वासा मुनि के सामने ही ऐरावत हाथी के मस्तक पर डाल दिए, इसको विशाल मस्तक था उस पर डाल, और वो ऐरावत मूर्ख जानवर वो सूंड से लेकर के और पैर के नीचे कुचल दिए। ऐरावत जब इंद्र ही नहीं जानता है महिमा भगवान के प्रसाद की, माला की, तो बेचारा हाथी क्या कर। दुर्वासा जी ने ये देखा, दुर्वासा जी एक बहुत क्रोधी व्यक्ति हैं, तो सही जगह पर क्रोध काम आया उनके यहां। भगवान के प्रसाद का इस तरह से अपमान जब इंद्र ने किया तो उन्होंने वहीं पर साप दिया, त्रिलोक लक्ष्मी से श्री से भ्रष्ट हो जाओ, और इस साप का पता दैत्यों को लगा, जहां था ईमेल से चाहे मोबाइल फोन से किसी ने सूचना दिया होगा, जैसे भी दुर्वासा मुनि का श्राप हुआ है, वो तो इस ताक में रहते ही हैं। बस उन लोगों ने अपनी सेना सजाया, जहां तहां से सबको निमंत्रण दिया और देवताओं के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। देवता युद्ध में आए और उसी को कह रहे सुखदेव गोस्वामी की जदा युद्ध सुवेग देवा बाध्य माना सीता युद्ध गता सवो निपतिता नुतिष्ठे रंथ भूय सब। देवताओं को ऐसी मार पड़ी दैत्यों के द्वारा ऐसी कि फिर उठ नहीं सके, या उठ नहीं सके का मतलब मनोबल एकदम नष्ट हो गया और बहुत लोगों के अंग भंग हुए थे, युद्ध करने का साहस नहीं कर सकते थे। तो जदा दुर्वासस सापत सेन्द्रा लोकास्त्रयो नृप निःश्रीकाश्चा भवंस तत्र निःसृज्या दया क्रिया। दुर्वासा मुनि का साप पहले हुआ था, तो दुर्वासा मुनि के साप से इंद्र आदि देवता तीनों लोकों के धन से शून्य हो गए, सारे देवता तीनों त्रिलोकी धन शून्य हो गए। एक प्रकार से दैत्यों के पास सारा धन चला गया, निःश्रीकाश्च अभव। और अब इज्ञादय क्रिया न ये सुन न समर्था बभु, अब कोई यज्ञ आदि नहीं होता था, यज्ञ कीर्तन भजन सब बंद। कीर्तन भजन से यज्ञ से देवताओं का बल बढ़ता है, लेकिन दैत्य लोग इस चीज को इसको भी रोक दिए सब, कहीं कोई नहीं कर सकता है यज्ञ, तो बहुत बुरी दशा हो गई। निशान न्यायत सुरगड़ा महेंद्र बलरा दय नाध गच्छन स्वयं मंत्र मंत्र अंतो विनिश्चय। इस दृश्य को देख करके इंद्र और बरुण जो खास भाई हैं, प्रधान है देवताओं में, वरुण देव और इंद्र ये और सब देवता मिल करके मंत्र अंत मंत्रणा करने लगे कि इस विपत्ति से हम लोग कैसे त्राण पाएंगे, कैसे हम धन पाएंगे, हमारा सब कुछ कैसे प्राप्त होगा। लेकिन विचार कर रहे थे, कई दिन सभा हुई, इष्ट गोष्ठी हुई कई दिन, लेकिन विनिश्चय नाध्य गच्छन विनिश्चय, कुछ निर्णय नहीं हुआ। आजकल के मीटिंग जैसा कुछ होता नहीं है, बस टाइम बीत जाता है। ऐसे देवता लोग अब क्या करें, कोई बुद्धि काम नहीं कर रही थी, क्या उपाय करें कैसे दैत्य कह रहा है हमारा त्रिलोकी का धन कैसे मिलेगा। नाध्य गच्छन मिनिस्टर, बड़े बड़े विद्वान थे वहां, बृहस्पति जी थे और सब थे, कुछ नहीं सूझ रहा था कि क्या किया। जब कुछ भी निर्णय नहीं हुआ सभा में, किसी की बुद्धि में काम नहीं आई, मंत्र ही मंत्र अंतो विविध मंत्र द्वारा विविध नीति द्वारा सोच रहे थे क्या किया जाए किया जाए, लेकिन निर्णय नहीं हुआ। तो निर्णय बाद में एक हुआ कि सबने इस निर्णय पर पहुंचा लास्ट में कि अब मेरु पर्वत के शिखर पर चला जाए और श्री ब्रह्मा जी के शरण में वे कोई उपाय बताएंगे। अपने से बुद्धि काम नहीं कर रहे थे। ततो ब्रह्म सभाम जगमुर मेरो मूर्धनि सर्वश सर्वम विज्ञापयाम चक्रु प्रणता परमेष्ठि में। सभी देवता गए, बहुत बुरी दशा देवताओं की हो गई थी, कई दिन खाना खाए पिए बिना बीत गया था। जब यज्ञ होता ही नहीं था तो कहां से भोजन मिले देवताओं, और कपड़ा फटा था, शरीर विचोट, कोई प्लास्टर कराया था, हाथ बांधा था, कोई कुछ किया था, जैसे कुछ किसी का कोई अंग कटा था, कोई कुछ। गए कहां गए, ब्रह्म सभा, ब्रह्मा जी के सभा में, सभा का अर्थ है मेरु पर्वत के शिखर पर एक सोने की नगरी है, ब्रह्मा जी का ऑफिस है, बहुत घर है वहां, बहुत विस्तार से। तो ब्रह्मा जी के सभा में गए, मेरो मूर्धनी मेरु पर्वत के मूर्ध पर शिखर पर सर्वश, और सभी देवता गए, क्योंकि इंद्र बलवन आदि इसलिए ले गए कि जिनकी टांग टूटी है, हाथ टूटा है, रोएंगे बच्चे आदि, तो वो बच्चे तो वहां नहीं होते हैं, सयाने, तो ब्रह्मा जी को दया आ जाएगी। इसलिए सबकी दुर्दशा दिखाने के लिए ले गए ब्रह्मलोक में, मेरु पर्वत के शिखर पर ले गए। ब्रह्मा जी सत्य लोक से, ब्रह्मलोक से आते हैं स्वर्ग में, उनका ऑफिस है जहां वे देवताओं से दुख सुना करते हैं, चाहे व्यवस्था करते हैं, तो वहां गए। सर्वम विज्ञापयान चक्रु, सारा विज्ञापन दिए, सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे ये हुआ है, हुआ, रो रो करके कह रहे थे। सबसे पहले प्रणता परमेष्ठी ने परमेष्ठी जी को प्रणाम किए, श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किए, सष्टांग प्रणाम करके और तब निवेदन किए। श्री ब्रह्मा जी भगवान के समान ही परम आनंद में रहते हैं, लेकिन कभी कभी देवताओं के दुख को मिटाने का प्रयास भी करते हैं। वैसे तो वे भक्त हैं और अपने भक्ति के आवेश में रहते हैं, तो ब्रह्मा जी उनके विचार को सुने। सब विलोक केन्द्र बाह्यादीन निःसत्वान विगत प्रभान लोकान अमंगल प्रायण असुरा न जथा दी। ब्रह्मा जी देखे और विचार भी करने लगे, देखे डायरेक्ट और विचार करने लगे और दुनिया कैसे चल रही है। तो उन्होंने विचार के देखा इंद्र वायु आदिन निःसत्वान, इंद्र और वायु आदि देवता, ये देवता निःसत्व हो गए। निःसत्व सत्व का अर्थ बल उत्साह बिल्कुल नहीं। विगत प्रभान, इनकी प्रभा चली गई, तेज सब चला गया है। लोकान अमंगल प्रायण, तो सारे लोग, लोगों का अमंगल हो रहा है, दैत्य राजा हो गए हैं, हार पीट कर छीन लिए, तो सभी लोग अमंगल प्राय हो रहे हैं। असुरान अजथा, लेकिन असुर जो है विचार किए तो असुर फ्लॉरिस्ट हो रहे थे, फिर बहुत तेजस्वी थे, धन धन से संपन्न थे। ब्रह्मा जी ने देखा तो समाहित चित्त से ब्रह्मा जी विचार किए, और इसके बाद जब देवताओं के दुख को देखे, उनकी दुर्दशा को देखे, ब्रह्मा जी तो कि परम भक्त हैं, अब सीधे भगवान का ध्यान करने लगे। उनके चित्त में भगवान तो उदित रहते हैं हमेशा, भगवान के डायरेक्ट पुत्र हैं, उनके नाभि कमल से जो कमल उत्पन्न हुआ तो उसी के पुत्र हैं, भगवान के डायरेक्ट शिष्य भी हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि समाहितेन मनसा संस्मरण पुरुषम परम, एकाग्र चित्त से मन को चारों तरफ से हटा करके संस्मरण पुरुषम परम, परम पुरुष भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे, स्मरण करने लगे। और थोड़ी ही देर में थोड़ा ध्यान करके और हंसने लगे, श्री ब्रह्मा जी का चेहरा कमल जैसा खिल गया, हंसने लगे, जो कि देवता सब रो रहे थे, बैठे थे वहां पर, उनके दुख को देख करके भगवान का ध्यान करने लगे, और भगवान का ध्यान में अनुकूल कुछ रिस्पॉन्स मिला तो ब्रह्मा जी हंसने लगे। वाचोत्फुल्ल बदन, उत्फुल्ल बदन, चेहरा खिल गया और देवताओं से भगवान ब्रह्मा जी बोले। यहां ब्रह्मा जी को भगवान परह कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, परह श्री ब्रह्मा जी देवता दानव के सुख दुख से परे रहते हैं और इस प्राकृत जगत में सबसे श्रेष्ठ पद पर हैं। तो वे हंसने लगे, बड़े खुश हुए और इस तरह से देवताओं से कहे। देवता सब गए थे ब्रह्मा जी की शरण में कुछ उपाय करेंगे, तो श्री ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, अहम् भवो जूयमथो सुरादयो मनुष्य तिर्यग्रम घर्म जातयः जस्यावतारांश कला विसर्जिता ब्रजाम सर्वे शरणम तमद्ययम। देखो देवताओं, भगवान ब्रह्मा जी बोले, मैं और शिव और यूयम और इंद्रादि तुम और भी देवता जो दैत्य हैं वे भी, मैं शिव इंद्रादि देवता और असुरादय दैत्य आदि मनुष्य या त्रिय पशु पक्षी या पेड़ पौधे घर्म जाते और घर्म से उत्पन्न होने वाले पसीने से जो उत्पन्न होते हैं, ये सब जितने भी हैं जस्य अवतार अंश कला विसर्जिता, जिन प्रभु के अंश के कला से हम सबका जन्म हुआ है, हम सबकी सृष्टि हुई है, ब्रजाम सर्वे शरणम तमव्ययम, ऐसे अव्यय अविनाशी भगवान की शरण में हम लोग चले। श्री ब्रह्मा जी को यही भरोसा मिला, इसीलिए हंस रहे थे, प्रसन्न हो गए। यदि वास्तव में भगवान की शरण में कोई जीव जाए तो वहां सुनवाई निश्चित होती है, वो कभी फेल नहीं करता है भगवान का शरण होना। इसलिए ब्रह्मा जी खुश हो गए कि भगवान के शरण में चलेंगे, भगवान के धाम के पास, तो भगवान सब उपाय करेंगे, तो प्रसन्न हो गए। तो देवताओं से यही कहे गए कि मैं और शिव, तुम लोग, दैत्य लोग, मनुष्य, पशु पक्षी, वृक्ष और स्वेदज, जो भी जीव है, जस्यावतारांश कला विसर्जिता, जिनके अवतार के अंश के कला से विसर्जित है, विशेष रूप से सर्जित हुए हैं, हम लोगों की सृष्टि हुई है, जो हम लोगों को जन्म दिए हैं, वे ही प्रभु अविनाशी श्री हरि हम सबकी शरण हैं, हम सब लोग उन्हीं के शरण में चल रहे हैं। वास्तव में यही बुद्धि है। यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार को, अपने गांव को, अपने देश को सुखी करना चाहता है, बुद्धिमानी इसी में है कि सबको भगवान की प्रार्थना करने को कहा जाए, सबको कीर्तन करने के लिए कहना चाहिए, सभी भगवान का जप करें, भगवान को प्रणाम करें, वही दुख मिटाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यही बुद्धि है। तो श्री ब्रह्मा जी स्पष्ट कर रहे हैं कि चाहे हम हो, चाहे शिव जी, चाहे तुम देवता लोग या दैत्य या मनुष्य या पशु पक्षी स्वेदज अंडज कोई भी जीव है, सभी भगवान के द्वारा सृष्ट हैं, भगवान जन्म दिए, तो उनकी शरण में हम लोग जाएं, वे प्रभु हमारी रक्षा करेंगे, सभी चलो भगवान की शरण में चलो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान के पास चले, भगवान जहां रहते हैं उनके धाम में जाएंगे, धाम के पास जाएंगे, उनसे अपील करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे। यही बुद्धि है। हरिश्री जी ब्रह्मा जी के इसी स्वभाव की याद करके कहते हैं, यद्यपि भगवान सब जगह हैं, कहीं भी प्रार्थना सुन सकते हैं, परंतु फिर भी भगवान से अगर कुछ विशेष चीज कहना हो तो उनके घर में ही कहना चाहिए, उनके भव्य प्रसाद उज्ज्वल मंदिर में ही जाकर के कहना चाहिए, भगवान वहां रहते। तो ब्रह्मा जी सबको कहे कि अब चलो सब लोग। तब देवताओं ने कहा कि हे प्रभु, जब असुर दैत्य आदि भी भगवान से उत्पन्न हुए हैं तो सबके प्रति वे सम हैं, तो हम देवताओं की रक्षा कैसे करेंगे? जब सबके प्रति सम हैं तो दैत्यों के प्रति भी उनका स्नेह होगा भगवान के लिए। उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि हम भगवान की शरण में जाएं, तो भगवान शरण में जाने पर क्या करेंगे? तो सबके प्रति सम हैं, तो ब्रह्मा जी समझाते हैं, न जस्य बध्यो न च रक्षणीय। भगवान का कोई न बध्य है न रक्षणीय है। बध का अर्थ मारने योग्य, भगवान के लिए कोई बध करने योग्य नहीं है और न तो कोई रक्षा करने योग्य। नोपेक्षणीय दरणीय पक्ष, न तो उनका कोई आदरणीय है न उपेक्ष है, कोई तिरस्कार करने जो उनका नहीं है भगवान का, न तो कोई स्पेशल आदर का विषय है। तथा पिसर्ग स्थित संयमार्थम धत्ते रज सत्व तमह तमांसी काले। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान का कोई रक्षणीय नहीं है, उपेक्षणीय नहीं है, बद्ध नहीं है, आदरणीय नहीं है, फिर भी काले समय समय पर भगवान प्रकृति के गुणों को स्वीकार करते हैं, सत्गुण रजोगुण और तमोगुण को स्वीकार करते हैं समय समय पर, उसके अनुसार ही व्यवहार करते हैं। तो जब तमोगुण को स्वीकार करते हैं, तमोगुण प्रधान होता है, इसका मतलब ये है, तो उस समय भूतों का बल बढ़ जाता है और दैत्यों का बल बढ़ता है, रजोगुण धारण करते हैं, रजोगुण प्रधान होता है, तमोगुण प्रधान होता है तो दैत्यों का बढ़ता है। भागवत में लिखा गया भूत का और किसका किसका, तो सत्गुण जब ज्यादा होता है तो देवताओं का बल बढ़ता है। तो ब्रह्मा जी कहे चिंता मत करो, अयम चतस्य स्थिति पालन क्षण, ये जो समय चल रहा है इस सृष्टि के पालन का समय चल रहा है भगवान का। अयम चतस्य स्थिति पालन क्षण, स्थिति का अर्थ सृष्टि, इसके पालन का अवसर चल रहा है। सत्तम जुषाण से, क्योंकि भगवान इस समय सत्वगुण को बढ़ाए हैं, भवाय देह न, प्राणियों के विकास के लिए वे सत्वगुण को बढ़ाए हैं, इसलिए तस्मात् ब्रजाम शरणम जगत गुरु स्वानम सनोद्धास्यति सम सुरप्रिय। इस समय हम लोग भगवान की शरण में जाएंगे तो भगवान इसमें सुरप्रिय है, देवताओं के देवता वैसे ही उनको प्रिय हैं और सत्गुण को धारण किए हैं, तो ऐसे जगत के हितैषी जगत गुरु की शरण में हम लोग जाएंगे तो भगवान न संविधास्यति हमारा कल्याण करेंगे, इसलिए चलो सब लोग भगवान के धाम में। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इत्याभास सुरान वेधा सह देवैररिन्दम अजितस्य पदम साक्षात जगाम तम सह परम। यह कह करके श्री ब्रह्मा जी समस्त देवताओं के साथ अजितस्य पदम अगच्छ जगाम, अजित के पद में गए। अजित मतलब वही वैकुंठ जिसको भगवान ने पहले सृष्टि किया था, उस धाम में गए वैकुंठ। पदम तमसह परम, जो तम से परे है, जो अप्राकृत है, प्रकृति को तम कहा गया है, तमसह परम मतलब जो प्राकृत राज्य से परे है, दिव्य है, अलौकिक है, सच्चिदानंद घन, भगवान के उस धाम में गए। भगवान से भेंट नहीं हुई अभी, धाम बहुत दूर में है ना, तो वहां गए सारे देवता गए साथ में। श्री ब्रह्मा जी सबको शिक्षा दे रहे हैं इस तरह से भगवान का भजन करना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि नहीं नहीं तुम घर पर ही रहो और हमको हो आने तो हम आ रहे हैं एक मिनट में जाते हैं मंदिर आ जाते हैं। सबको मंदिर जाना चाहिए, क्या हर्ज है, मंदिर में सबको जाना चाहिए, पत्नी भी जाए, बच्चा भी जाए, माता पिता को भी लेकर जाना चाहिए। तो भगवान को प्रणाम करेंगे, दर्शन करेंगे, आ जाएंगे। तो ब्रह्मा जी सबके साथ गए। महाराज परीक्षित को सुखदेव को समय अरिंदम कह रहे हैं, शत्रुओं को जीतने वाले हे परीक्षित। ब्रह्मा जी सबके साथ अजितस्य तमसह परम पदम जगाम, अजितस्य साक्षात पदम, जहां भगवान अजित रहते हैं, जहां भगवान विराजते हैं, उस धाम में गए जो तमोगुण से अर्थात प्रकृति के राज्य से परे है। तो वहां गए इसका मतलब है कि तत्समीप प्रदेशम प्रापयित्यर्थ, वहां धाम में प्रवेश नहीं कर गए, उसके निकट गए। क्रम संदर्भ में शिलजी गोस्वामी पाद इसको लिखते हैं कि वो उसके निकट गए, वहां जाने का अधिकार नहीं है, वहां तो भगवान के पार्षद जब बनते हैं तब जाते हैं। ब्रह्मा जी सहित शिव जी सहित ये सब देवता बाहर वैकुंठ उसके निकट पहुंचे तो तत्र अदृष्ट स्वरूपाय श्रुत पूर्वाय वै विभु श्रुतिमब्र दैवी भीर गिर्भिष्टो बहितेन्द्रिय। वहां जाकर के श्री ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करने लगे, गुण गाने लगे सबके साथ। इसका अर्थ है अपने आप समझ लेना चाहिए। तो सबको तो पता नहीं था, श्री ब्रह्मा जी को सब पता था, वेदों की जो वाणी है भगवान का जिसमें वर्णन है तो उसको बोलने लगे। तो जब भगवान को वहां देख ही नहीं रहे थे, अदृष्ट स्वरूप आया, कैसे कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन ऐसे ही किया जाता है तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तत्र अदृष्ट स्वरूप आया श्रुत पूर्वाय, जिनके विषय में बहुत सुना गया है भले उनके रूप को नहीं देखें, रूप है लेकिन अदृष्ट है। भगवान अपने घर में विराजते हैं वैकुंठ में तो बाहर तो दिखाई नहीं देते हैं, दिखाई दे या न दे लेकिन ब्रह्मा जी जिनके विषय में बहुत सुन चुके हैं श्रुत पूर्वाय, अदृष्ट स्वरूप आया श्रुत पूर्वाय, कोई चिंता की बात नहीं है कि भगवान आंखों के सामने नहीं दिखाई देते हैं लेकिन है, उनका रूप है पर अदृष्ट है। तो ऐसे प्रभु के विषय में सुनना चाहिए, ब्रह्मा जी बहुत सुने हैं। जो व्यक्ति भगवान के विषय में सुनता है वास्तव में भगवान को वही जान सकता है और प्यार कर सकता है। सुनेगा ही नहीं वो क्या, ऐसे थोड़े भगवान आकर के सामने दर्शन देने वाले हैं। कितने पीढ़ी के पीढ़ी मनुष्य मर जाएंगे जन्म ले ले करके, लेकिन भगवान को गरज नहीं है कि आकर के दिखाई दे दे, उनको देखने की साधना करनी पड़ती है। और ब्रह्मा जी जैसे महान आचार्य को देवता को भी भगवान की स्तुति करनी पड़ रही है बिना देखे, क्योंकि सुने हैं भगवान का रूप भगवान का गुण सब कुछ प्रचलित है, अदृष्ट स्वरूप पर दृष्ट पूर्व श्रुत पूर्व, इसीलिए सुनना चाहिए सुनना चाहिए। कितने ऐसे मूर्ख लोगों से पूछा करते हैं क्या आप भगवान को देखे हैं और दिखा सकते हैं, इतने काबिल हो कि बस तुमको दिखा दिया। श्रील प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति ने कहा क्या आप भगवान को देखे हैं हमको दिखा सकते हैं, प्रभुपाद जी ने कहा हां लेकिन दिखा नहीं सकते। क्यों, तुम देखने की शक्ति ही नहीं है कैसे दिखाएंगे, बोले आंख कहीं से लाओ तब दिखाएंगे। भगवान को देखने के लिए ये थोड़े आंखें समर्थ हैं, प्रेम की आंख चाहिए भाव की आंख चाहिए, और भाव और प्रेम उत्पन्न होता है भगवान के विषय सुन करके। श्रुत पूर्वाय बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, जो व्यक्ति जितना ही सुनेगा भगवान के विषय में उतना ही भगवान को पकड़ पाएगा सही से, उसके हृदय में भगवान स्फुरित होते हैं, उसके वाणी में आते हैं, उसके कान में आते हैं और उसके सभी जीवन में आ जाते हैं। तो भगवान एक सत्य है, तब तो ब्रह्मा जी देवताओं के साथ जा रहे हैं भगवान के धाम, और वहां जाकर के भगवान ने कोई अपनी रचना में गान चालू नहीं कर दिया ब्रह्मा जी ने। दैवी भी गिर भी, दैवी गिर मतलब दैवी वाणी, वेद वाणी में भगवान की स्तुति करने लगे। जैसे आप लोगों ने देखा है कि श्रील प्रभुपाद जी इंटरनेशनल सोसाइटी स्थापित किए लेकिन उन्होंने अपना रचा हुआ भजन उसमें नहीं दिया है, वो भी जबकि समर्थ थे रच सकते थे एक आध भजन लेकिन अपना कोई भजन है। महामंत्र कलि संतरण उपनिषद का है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम इस साक्षात वेद का वाक्य है महामंत्र, और गोविंदम आदि पुरुषोत्तम हम भजामि ये ब्रह्म संहिता का है, और कुछ प्राचीन आचार्यों के पद है। तो भगवान का वर्णन ऐसे किया जाता है, ये नहीं कि हमारा ये मत है हमारा अनुभव है ये है वो है, कोई थर्ड क्लास का गीत बनाकर चालू कर और उसी को शाम सुबह गा रहा है, कोई उसका मतलब नहीं है, कुछ नहीं है। तो ब्रह्मा जी जाकर के वेद वाणी से स्तुति करने लगे। एक श्लोक वेद वाणी का हम लोग यहां पर आस्वादन कर रहे हैं। मैं तो दो श्लोक की सोचा था, लेकिन कम से कम एक श्लोक का यहां पर थोड़ा आस्वादन कर रहे हैं। ये स्तुति बहुत लंबी है, इसको करने में तो एक सप्ताह इसी में लग जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, दो श्लोक का करेंगे। ब्रह्मोवाच अविक्रियम सत्यमनन्तमाद्यम गुहाशयम निष्कलम प्रतर्क्यम मनोग्रयानम वचसा निरुक्तम नमामहे देव वरम वरेण्यम। वरेण्यम देव वरम नमामहे, ये मूल वाक्य है। जो प्रभु वरेण्य है, जीवन में वरण करने योग्य है, मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सुंदर, सबसे सुखद वस्तु क्या है? भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु है, उनको वरेण्य कहते हैं। वरेण्य का अर्थ है जो वरणीय है, सबसे श्रेष्ठ है। मनुष्य को किसके साथ संबंध करना चाहिए, किससे नाता जोड़ना चाहिए, कौन सबसे श्रेष्ठ है, कौन सबसे अच्छा मित्र है, बंधु है, सब तो है विष्णु, वरेण्य। और देव वरम, जो देवताओं को भी वर देते हैं, देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, देवताओं के भी रक्षक हैं, ऐसे प्रभु को नमामहे, हम प्रणाम कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के स्तुति में ये वाक्य बार बार आएगा, हम भगवान की शरण में हैं, हम भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, और उसके अनुसार, उनके एक्शन के अनुसार सारे देवता प्रणाम कर रहे हैं। तो भगवान के गुण हैं, किनको प्रणाम कर रहे हैं? वरेण्यम देव वरम, कैसे हैं? सत्यम, भगवान सत्य है। तीनों काल में एक समान है, जिनका ज्ञान और जिनका स्वरूप, जिनके परिकर, जिनका धाम, जिनकी लीलाएं नित्य हैं, नित्य जो परिवर्तनशील नहीं है, तो उसको कहते हैं सत्य। कैसे सत्य है? क्योंकि अविक्रियम, निर्वद्यम, निरंजनम इति श्रुते, निर्विकार, अविक्रियम, जिनका कोई भी चीज प्राकृत पदार्थ जैसा विकृत नहीं होता। जैसे मनुष्यों का शरीर है, देवताओं का शरीर है, एक दिन यह शरीर जर्जर हो जाता है, रोगों से ग्रस्त होता है, जब तक रहता है तब तक भी अनेक रोग इसमें लगे रहते हैं। आज शक्ति है शरीर में, कल शक्ति नहीं रहेगी, इसको विक्रिया कहते हैं या विकार कहते हैं। ये शारीरिक विकार है, और इसके साथ ही साथ कुछ चित्त का विकार है, क्रोध है ना मन में, काम, लोभ, क्या क्या दुर्भावना, द्वेष आदि। इन भगवान में ये सब नहीं है, उनमें कोई विक्रिया नहीं है, निर्विकार। अविक्रियम सत्यम, जो सत्य है, अविक्रिय है, उनको हम नमस्कार करते हैं। ये कैसे? अनंतम, अनंतम ब्रह्म आत्मा इदमग्र आसीत इत्यादि, उनका कोई अंत नहीं है, रूप गुण लीला आदि का भी अंत नहीं है, देश और काल के द्वारा उनकी कोई सीमा नहीं है, और सबकी देश द्वारा सीमा है कि इस जगह पर है तो और जगह नहीं है, इस समय है तो और समय नहीं है, लेकिन भगवान सब जगह हैं और सब समय हैं, उनका कोई अंत नहीं है, उनका विनाश नहीं है। मुख्य अर्थ ये है, जो अविक्रिय हैं, जो सत्य हैं, अनंत हैं और आद्य हैं। आद्य का अर्थ है अनादि, जिनकी कोई शुरुआत नहीं है और जो सबकी शुरुआत हैं। अनादि राधिर गोविंद, आद्यम कहते हैं, आद्य जो सबको जन्म देने वाले हैं। कभी कभी लोग पूछा करते हैं कि सबको जन्म भगवान दिए, भगवान को कौन जन्म दिया? भगवान वो है जिसको कोई जन्म नहीं दिया, और भगवान वो है जिसको जिसने सबको जन्म दिया, यही है भगवान का डेफिनेशन। तो यहां भगवान को प्रणाम किया जा रहा है। अभिक्रियम सत्यमनंत माध्यम गुहाशयम, भगवान सबके गुहा सबके हृदय में वास करते हैं, समस्त जीवों के हृदय में वास करते हैं, उनका पता भी नहीं चलता। भगवान सबके हृदय में है लेकिन कोई जान नहीं पाता है। गुहाशय निष्कलम, ये उपाधि शून्य है। जो जीव है उसकी उपाधि है, जीव है जिनमें आत्मा है लेकिन उसका ज्ञान कैसे होता है, उसको उपाधि है, शरीर दिया गया है, शरीर के ऊपर कपड़ा दिया गया है, कोट दिया गया, क्या ये सब उपाधि इसको कहते। भगवान है शुद्ध सच्चिदानंद श्री विग्रह वाले हैं, उनमें देह दही का भेद नहीं है, निष्कल है। कलाकार से उपाधि में कोई उपाधि नहीं है। यह कौन जीव का वर्णन शुद्ध किया जा सकता है, किसी का नहीं, देह से ही वर्णन करते हैं। उसका नाम क्या है तो ये नाम है, जीव का थोड़े वो नाम है, नाम तो देह का दिया जाता है। फिर पूछा और उपाधि, ये किसका बेटा है, इसका बेटा है। वास्तव आत्मा किसी का बेटा नहीं है, वो तो कृष्ण का है, लेकिन देह का सब परिचय दिया जाता है, इसको उपाधि कहते हैं। लेकिन भगवान इस प्रकार की उपाधि से सुनिए, निष्कल अप्रतर्क्यम, मन में भगवान का अनुमान नहीं किया जा सकता। मन एक प्राकृतिक चीज है और मन अगर भगवान की कुछ धारणा करता है तो अपने मन मन की वो तरंग है, इसको अप्रतर्क कहते हैं। प्रकृति के जो कार्य हैं, जो वस्तुएं हैं प्रकृति के द्वारा उत्पन्न की गई, तो उन्हीं के विषय में कुछ तर्कना की जा सकती है। और भगवान अप्राकृत हैं, अतः प्रकृति से साजात्य के अभाव में अप्रतर्क है। क्यों अप्रतर्क है, क्योंकि मनसो ग्रयानम, मन जहां तक सोचेगा तो उसे वे आगे ही रहते हैं। मनोग्रयान, जिनका गमन जिनका यान मन से आगे रहता है, मन जहां जहां जाएगा उसे पहले ही भगवान रहते हैं, मन उन तक पहुंच ही नहीं सकता है, इसीलिए मन मन से आगे रहते हैं। अतः वचसा अनिरुक्तम, तो फिर वचन द्वारा उनका वर्णन नहीं हो सकता। तो हे प्रभु, आपका वचन द्वारा वर्णन नहीं हो सकता है, हो क्या सकता है, केवल कि नमाम है, नमस्कार हम कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि भगवान का गुण वास्तव में गाया नहीं जा सकता है, वो जितना में है जैसे हैं, पर भगवान को प्रणाम किया जा सकता है, ये शुद्ध चीज है ना। कोई ब्रह्मा जी से तो बड़ा हो नहीं सकता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप वचन से अगोचर हैं, मन से अगोचर हैं, आप विक्रिय हैं, सत्य हैं, अनंत हैं, ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम कर रहा हूं। भले भगवान के कोई महिमा न जाने, भगवान के गुणों का बखान करने में समर्थ न हो, पर प्रणाम करने में समर्थ है ना। प्रणाम कौन नहीं कर सकता है, तो हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। सभी ने मैं भगवान की शरण ले रहा हूं, मैं भगवान को प्रणाम कर रहा हूं, ये वाक्य आया है। अच्छा, एक और श्लोक की व्याख्या करते हैं। बत्तीसवें श्लोक, क्योंकि सबका करने में बहुत समय लगेगा, वो तो संभव ही नहीं है। एक श्लोक की व्याख्या कर रहे, पादौ महीयम स्वकृतैव जत्र चतुर्विधो जत्र हि भूत सर्ग सवै महापुरुषयात्मतंत्र प्रसीदताम ब्रह्म महाविभूति। महति विभूति जस्य स महाविभूति। हे प्रभो, ब्रह्मा जी कहते हैं, आपका का वैभव, आपकी विभूति महान है, आप परम धनी है, ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं, मैं प्रणाम कर रहा हूं। और धन क्या है, भगवान के पास छोड़ दीजिए, ये सारा धन गिनाया गया है, 12 श्लोकों में गिनाया गया है। एक श्लोक से हम लोग थोड़ा सा समझें। पादौ महीयं स्वकृतैव जस्य स्वकृतैव अपने द्वारा सृष्टा अपने स्वयं ही जिसका निर्माण किया है यह पृथ्वी जस्य पादौ आपका चरण है दोनों चरण है यह पृथ्वी आपका चरण है जत्र ही जिस पृथ्वी पर चतुर्विध भूत सर्ग चार प्रकार के जीवों की सृष्टि है इस पृथ्वी पर चार प्रकार के जीव को जरायुज और उद्भिज और अंडज स्वेदज चार प्रकार के जीव हैं सारी सृष्टि में जितने भी जीव हैं चार प्रकार के जरायुज कहते हैं जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं जैसे मनुष्य गाय बानर सब बहुत बड़ी संख्या है मनुष्यों की पशुओं की इस तरह से और उद्भिज उद्भिज कहते हैं जो धरती को फोड़ करके उत्पन्न होते हैं जैसे वृक्ष पौधे लता घास तृण वगैरह सब और अंडज जो अंडा से उत्पन्न होते हैं जैसे पक्षी मछली इत्यादि और स्वेदज जो पसीने से या गर्मी से उत्पन्न होते हैं कई छोटे छोटे जीव जंतु हैं ये चार प्रकार की सृष्टि कहां है पृथ्वी पर है धरातल पर है और यह पृथ्वी आपका चरण है चतुर्विध जत्र स्वर्ग सभी महापुरुष आत्मतंत्र प्रसिद्ध तंत्र महादेव लेकिन आप किसी पर आधारित नहीं हैं आपके द्वारा रचित पृथ्वी पर सभी जीव आधारित हैं सभी खा रहे हैं जी रहे हैं आपकी महती विभूति है पृथ्वी का नाम लेकर के ब्रह्मा जी कहते हैं कि पृथ्वी आपकी आपका चरण है अर्थात आपका धन है आपने इसको पैदा किया स्वकृता एवं पृथ्वी को कौन बनाया तो स्वकृता निजेन कृता भगवान ने इसका निर्माण किया है कोई पृथ्वी बनाया नहीं है आज तक कोई भी व्यक्ति इस बात को खोज नहीं सका कि पृथ्वी कौन बनाया वास्तव में भगवान ने बनाया है ब्रह्मा जी कहते हैं लेकिन दूसरा कोई बनाया नहीं पृथ्वी पर रोड बना सकता है मोटर गाड़ी बना सकता है यहीं का सामान लेकर के लेकिन कोई कुछ बनाया नहीं पृथ्वी का जो आया खाली हाथ आता है खाली हाथ जाता है सब भगवान की बनाई हुई सृष्टि है पृथ्वी से अपने जीने के लिए उपभोग की अनेक वस्तुएं लोग लेते हैं पृथ्वी से तेल निकालते हैं और अनेक अनाज उत्पन्न होते हैं अनेक प्रकार के फल उत्पन्न होते हैं अनेक प्रकार की वस्तुएं उन वस्तुओं से कपड़ा बनता है जूता बनता है घर बनता है क्या क्या बनता है कि पृथ्वी भगवान का धन है जरा विचार कीजिए सारी वस्तुओं को सारे फल सारे तेल और सोना चांदी और हीरा और पृथ्वी भी इन सब का आकलन किया जाए तो कितना धन होगा मनुष्यों के स्टैंडर्ड से इसका दाम निकाला जाए क्योंकि पृथ्वी इतना महंगा हो रही है बॉम्बे हो चाहे दिल्ली हो कहीं भी हो छोटा सा भूमि खंड का क्या कीमत है ये भूमि गज में बिक रही है मीटर गज में और कितना दाम हो रहा है पूरे पृथ्वी का दाम निकाला जाए और पृथ्वी के भीतर जितना भी तेल है पेट्रोल है और हीरा है सोना है सब कुछ का और भगवान इस धन को ऐसे फेंक दिए हैं और इसी पर एक कंगाल सब जी रहे हैं खा रहे चार प्रकार के जीव चींटी जैसे जहां तहां खा रहे हैं जी रहे भगवान को ये कोई चिंता नहीं है इसका क्या करेंगे भगवान तो चाहते ठीक है खाओ जियो लेकिन पाप मत करो पर भगवान के धन को ही कोई बेच रहा है खा रहा है ये कर रहा है वो कर रहा है यही व्यवस्था बहुत है कठिन है कि यहां से कुछ ले नहीं जा सकते। ठीक है, खाओ पियो सब करो, सोना यहां से इंग्लैंड ले जा सकते हो, लेकिन इंग्लैंड से परलोक में जाते समय कुछ भी नहीं ले जा सकते। ये अंग्रेज लोग ले गए सोना को, बहुत प्रकार से ले गए, तो ले जाओ इधर से उधर से, यहां का धन वहां, यहां का धन यहां, पर यहीं रहेगा, कोई लेकर जा नहीं सकता है। सोना का एक बारीक टुकड़ा भी मरने के बाद अपने साथ कहीं दूसरे लोक में नहीं ले जा सकते। उलट फेर करो सब इधर से उधर सब, लेकिन जैसे एक बड़े हाल में किसी चोर को कर दिया जाए और किवाड़ बंद हो चारों तरफ से, तो वहां से धन उठाएगा उस कोने में, वहां से उस कोने में, लेकिन अंततः तो वहीं छोड़ करके जाना, जाएगा भी क्या है। इस पृथ्वी पर इतना अपार धन है, इस पृथ्वी पर एक से एक शहर है, शहरों में अनेक लोग हैं, अलग अलग घर है, सबके खाने पीने का प्रबंध, सबके सोने का प्रबंध, वास स्थान, जीवन की आवश्यकताएं, क्या क्या, ये सब भगवान ही दे रहे हैं ना। पृथ्वी से ही सब कुछ निकलता है, और स्वयं पृथ्वी भी भगवान का एक धन है। इसीलिए ब्रह्मा जी भगवान को प्रणाम करते समय महाविभूति कह रहे हैं। एक बार एक व्यक्ति पर बहुत कर्जा हो गया था, हमसे पूछा कि हम क्या उपाय करें, तो हमने यही 12 श्लोक पढ़ने के लिए कहा कि भगवान का ये 12 श्लोक है, प्रसिद्ध ताम स्वर्णम स्वर्णम महाविभूति, महाधनवान भगवान हम पर प्रसन्न। तो उसने पढ़ा और 3 महीने में उसका ऋण साफ हो गया, केवल पढ़ने से। कोई ना कोई भगवान उपाय कर दिए, हम तो ऐसे कहे थे, और हमें विश्वास है इस बात से, इस बात पर कि भगवान की शरण में होकर भगवान के सामने पाठ किया जाए तो भगवान हमारा दारिद्र हर लेते हैं, सब धन तो उनका ही है। तो ब्रह्मा जी देवताओं के साथ गए हैं शरण में भगवान के, यही गा रहे हैं। इस तरह से यहां से चालू करके 12 श्लोक हैं, जिसमें प्रसिद्ध ताम महस महाविभूति हर एक श्लोक में है। जल उनका ये है, आकाश उनका ये है, ये है। इस तरह से ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो आगे कल की कथा में हम लोग सुनेंगे किस तरह भगवान उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर के प्रकट हुए। भगवान बहुत सुंदर स्वरूप में प्रकट हुए हैं। उसके बाद देवताओं से बातचीत करेंगे। हरे कृष्ण, जय श्री लक्ष्मी।